नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पर्व और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी सोमनाथ में ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे तथा सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अनगिनत योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की जा रही है। भारत अमरीकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर उच्च शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और अपनी 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने की अनिवार्यता पर चलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपए होता था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत की धरती पर कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि इस वर्ष 31 मार्च से देशव्यापी सामूहिक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जाएगा। 3 साल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देश को नशा मुक्त बनाना है। श्री शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में समग्र शिक्षा के 3रे संस्करण को संबोधित करते हुए कही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी और जांच में बाधा डाली। हालांकि अदालत में हंगामे के कारण सुनवाई स्थगित हो गई और न्यायालय ने मामले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत न मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कल सिरमौर जिले के हरिपुर धार के पास एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और 33 घायल हो गए। ये बस सोलन से हरिपुर धार जा रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कल 18 महिलाओं सहित 63 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 36 माओवादियों पर 1,19,00,000 रुपए से अधिक का इनाम था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत सभी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। 53वां विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 9 दिवसीय ये मेला इस महीने की 18 तारीख तक चलेगा। ये मेला भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ढाका स्थित पार्टी कार्यालय में बीएनपी स्थायी समिति की बैठक में ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैच की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बेंगलुरु के लिए नादिन डी क्लार्क ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए और बल्ले से 44 गेंदों पर नाबाद 63 रन बनाकर मैच जिताया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।